हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे।
ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को इस संगम युग में बहुत ऊंचा भाग्य दिया है, तो संगम युग में बाबा ने हम बच्चों को इतना ऊंचा भाग्य दिया है कि जैसे अपने भाग्य को भी हम सोचते जाएं या उसके बारे में चिंतन करें तो भी जैसे खुशी का पारा चढ़ा रहता है। संगम युग सर्वश्रेष्ठ युग है और इसी युग में बाबा हर बच्चों के लिए एक बैंक खोल देते हैं, जिस बैंक के अंदर जितना खजाने से संपन्न बनना चाहो बन सकते हैं। दुनिया के अंदर जो बैंक होती है उन बैंक में अपना खजाना रख करके बंद कर देते हैं, बस इंटरेस्ट जमा होता रहता, उसको देख देख करके भी खुश होते हैं। वहां कमाई करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर के अपना बैंक बैलेंस जमा होता है, लेकिन संगम युग में बाबा ने जो बैंक हम सब बच्चों को दी है उसमें जमा करने की विधि भी अपनी है, जिससे हम खुद भी संपन्न होते जाए औरों को भी संपन्न करते जाए। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि हमारे पास खजाना कितना है, अपनी बैंक में देखे जरा झांक करके कौन से खजाने हैं संगम युग में बाबा द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं, क्योंकि खजानों का ज्ञान होगा तो पता चलता है कि कितना जमा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा खजाना कौन सा है संगम युग का, बताएं कोई ना? ये क्लास नहीं है, आदान प्रदान है। कौन सा खजाना? समय का खजाना है, सबसे बड़ा खजाना है ये समय का खजाना। दूसरा खजाना संकल्पों का खजाना है ना, ब्राह्मण जीवन में हमारी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है ये समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, वाचा शक्ति का खजाना, कर्मणा का खजाना, गुणों का खजाना, ज्ञान का खजाना, खुशी का खजाना, शक्तियों का खजाना, कितने प्रकार के खजाने हैं, दुआओं का खजाना, कोई कम खजाने हैं संगम युग में? इसीलिए बाबा जब भी अव्यक्त मुरली चलाते हैं तो हर एक बच्चे को विशेष आत्मा के रूप में देखते हैं, क्योंकि बाबा उस स्वरूप में हमें देखता है कि ये खजाने से कितनी संपन्न स्वरूप में है। तभी बाबा टाइटल में भी हम बच्चों को यही देते हैं, पद्मा पदम भाग्यवान हो, जिसके हर कदम में अगर खजानों से संपन्न है और उसको यूज करने की विधि आती है, उसको बढ़ाने की विधि आती है, तो हर कदम में हम पद्मों की कमाई अपनी जमा कर सकते हैं। तो एक तो इतना खजाना से संपन्न है तो रिचेस्ट हो गए हम, इसलिए कहते हैं ना दुनिया के अंदर हम ब्राह्मण आत्माएं भले दिखने में सबसे सिंपल है, सफेद कफन पहना हुआ है, लेकिन सफेद कफन होने के बावजूद भी हमारे जैसा रिचेस्ट इस दुनिया में कोई नहीं है। तो इतना नशा चढ़ता है कि हम इतने रिचेस्ट है, ये नशा और निश्चय के डाउट है अपने में कि पता नहीं मेरे पास होगा या नहीं होगा। ये पता नहीं वाला संकल्प नहीं आना चाहिए कभी भी। ब्राह्मण जीवन जैसे ही प्राप्त करते हैं ऐसे हो जाता जैसे गोल्डन स्पून इन माउथ। कोई बहुत बड़े खानदान का बच्चा पैदा होता है तो उसको सोने के चम्मच से दूध पिलाया जाता है, गोल्डन स्पून इन माउथ कहते हैं। तो हम ब्राह्मण आत्माएं इतने ऊंचे खानदान की, आज बाबा ने कहा ना अपने कुल को स्मृति में रखो, तो इतने ऊंचे खानदान के, इतने ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं हम कि हम सभी बच्चों को बाबा ने पालना जो की है वो गोल्डन स्पून इन माउथ है हर एक के लिए। ये नहीं कि किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है, नहीं, हर एक बच्चा पैदा होते ही ये सर्व खजाने जैसे उसको गिफ्ट के रूप में बाबा दे देता है। तो इन खजानों से संपन्न हम सभी गोल्डन स्पून इन माउथ है। लेकिन ये खजाने चलते चलते बढ़ते हैं या कम होते हैं ये हमें देखना है। अगर बढ़े तो भी कैसे बढ़े और कम होता है तो भी कैसे कम होते हैं, तो उसमें समय और संकल्प ये दो चीज बढ़ाने के लिए भी है और कम करने के लिए भी है। जब भी हमारा समय और संकल्प सफल होता है, समर्थ होता है, उतना ये खजाना बढ़ता है। लेकिन जितना हमारे संकल्प में व्यर्थ चलता है उतना ही, या नेगेटिव चलता है उतना ही ये खजाना कम होने लगता है। खजाना बढ़ रहा है उसकी निशानी क्या होगी? कैसे पता चलेगा हमारा खजाना बढ़ रहा है? तो दुनिया में भी किसी का खजाना अगर बढ़ता है तो उसको एक खुशी होती है, जैसे जैसे जमा करते जाए बैंक में तो खुशी बढ़ती जाती है और एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, आंतरिक संतुष्टि का अनुभव होता है। ठीक इसी तरह इस जीवन के अंदर भी जब हमारे खजाने अपने अंदर बढ़ रहे हैं तो उसकी विशेष निशानी है एक खुशी की लहर, प्रसन्नता की लहर जैसे अंदर में छा जाती है, साथ ही साथ एक सेटिस्फेक्शन अंदर में प्राप्त होने लगता है, संतुष्टता, जैसे स्वयं स्वयं से संतुष्ट होने का अनुभव करते हैं। ये निशानी है कि खजाना हमारा बढ़ रहा है। लेकिन अगर चेहरे पर टेंशन है, व्यर्थ संकल्प चल रहा है, नेगेटिव संकल्प चल रहा है, तो ये खजाना खाली होने से परेशानी का अनुभव, जीवन में जैसे खोखलेपन का अनुभव करने लगते हैं। तो अब ये खजानों को बढ़ाने के, सारे खजाने को बढ़ाने की विधि एक ही है। कौन सी विधियां बाबा ने मुरलियों में हमें बताई है, कौन सी विधियां बताई है? पहली विधि जो बाबा ने बताई है कि जितना खजानों को स्वयं प्रति, दूसरों के प्रति या सेवा प्रति यूज करते जाएंगे उतना ये खजाना बढ़ेगा। इसीलिए ज्ञान दान का भी महत्व है कि जितना देते जाओ उतना अंदर में बढ़ता जाता है, खुशी बांटते जाओ उतना बढ़ता जाता है। किसी की सेवा करके जैसे उनको कुछ सेल्वेशन देते जाओ उतना अपने अंदर भी सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाता है। माना यूज करो, स्वयं प्रति या दूसरों के प्रति या सेवा के प्रति, जहां भी हमारा समय, श्वास, शक्ति, संकल्प ये सफल हो रहा है, हमें महसूस हो रहा है कि जैसे व्यर्थ नहीं जा रहा है, सफल हो रहा है, किसी को मेरे द्वारा सुख मिल रहा है, तो ये सुख की अनुभूति जिसको हो रही है, तो ये हमारे खजाने को बढ़ाती है। इसलिए बाबा कहते, जितना सुख देते जाओ, सुख का खजाना अंदर में बढ़ता जाएगा। खुशी देते जाओ, खुशी का खजाना बढ़ता जाएगा। ज्ञान बांटते जाओ, तो जो इसमें महादानी या वरदानी बन जाता है, वो खजाने को खजानों से संपन्न होने लगता है। अब महादानी और वरदानी कैसे बनते हैं? तो महादानी बनने के लिए जैसे मुख के द्वारा दान करना या कर्म के द्वारा दान करना, ये महादानी है। लेकिन वरदानी माना अपनी वृत्तियों से दान करना, शुभ संकल्पों से दान करना, शुभ भावनाओं से दान करना, ये वरदानी बना देता है। तो जहां हमने दूसरों के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ वृत्ति रखी, तो वहां हम वरदानी बन जाते हैं और अपने अंदर बढ़ाते हैं। या महादान, जैसे वाचा के द्वारा किसी को मोटिवेट करने वाले शब्द कह दिए, बहुत अच्छा, उसका उमंग उत्साह बढ़ा दिया हमने। चलो हमने वो कार्य नहीं भी किया हो या हमें चांस नहीं भी मिला हो कोई सेवा करने का, लेकिन हम जिसको चांस मिला उसको हमने उमंग उत्साह के शब्द कह दिए, उसको मोटिवेट कर दिया हमने, वो कर रहे हैं, उसको दो अच्छे शब्द, उसके अंदर बल भरने वाले शब्द कह दिए, ये महादानी बन करके जब कार्य किया तो उसका शेयर हमें भी मिल जाता है। सेवा भले उसने किया लेकिन हमने मोटिवेट किया तो और उसमें उमंग, जोश आ गया करने का, तो उसका आधा मिल जाता है। सहज है ना, हमको करना भी नहीं पड़ा, खाली मोटिवेशन के शब्द कहने पड़े, इसीलिए कहा। लेकिन अगर उसको सेवा मिली और मुझे ईर्ष्या आ गई, मुझे क्यों नहीं मिला, मैं भी योग्य थी, मेरे अंदर भी कैपेसिटी है, मेरे अंदर भी है, और उसके कारण उसको कोई ऐसे शब्द कह दिए जो उसका जो नशा है करने की खुशी है वो डाउन हो गई, तो ये मेरे खाते को भी माइनस करता है, मेरे खाते को भी जमा नहीं करने देता है, मेरे खाते को भी माइनस करता है, और उसका जो भी नुकसान हुआ उसकी सजा के रूप में मुझे भी उसकी भोगना भोगनी पड़ेगी। ये है गुह्य गति कर्म की, या ये खजानों को जमा करने की या माइनस करने की। इसीलिए संगम युग में किसी को भी मिला हो सेवा करने का भाग्य, उसको दो अच्छे शब्द हम कह दे, उसको मोटिवेट करने वाला शब्द कह दे, तो उसके सेवा में जो उमंग उसको आ जाता है तो आधा वो मेरे खाते में आ जाता है। तो इतनी सहज विधि हो अगर, तो ईर्ष्या करनी चाहिए या शुभ भावना, शुभ कामना रखकर वरदानी बन जाना चाहिए? क्या बनना है? समझदारी किसमें है? ईर्ष्या करनी चाहिए कि भाई उसको ही सेवा का चांस मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, मैं कोई कम हूँ क्या, मैं भी ऐसी हूँ वैसे हूँ, ये भावनाएं जनरेट करना ये समझदारी है? या उसको और ही उमंग उत्साह के शब्द कह करके, शुभ भावना, शुभ कामना के बोल बोलते हुए उसके अंदर और उमंग उत्साह भर देवे हम, और उसके आधार से अपना खाता भी प्लस कर देना, ये समझदारी है। ये अभी अपने ऊपर डिपेंड करती है कि हमारी मनोवृत्ति के अंदर क्या है। इसलिए कहा, हम बहुत ऊंचे खानदान के लोग हैं, ऊंचे कुल के लोग हैं, जब हम ऊंचे कुल के हैं, ऊंचे खानदान के हैं, हमारी औकात इतनी ऊंची है, तो हम निम्न कक्षा के संकल्प अपने अंदर रख सकते हैं। अगर निम्न कक्षा के संकल्प अगर रखेंगे और किसी का उत्साह को भी हम कम कर दे, तो उसको किस खानदान का कहेंगे, है ना? या जो दुनिया के अंदर कहावत है कि वाणी से वर्ण का पता चलता है, जिस क्वालिटी की वाणी होती है उससे उसका वर्ण, कि ये ब्राह्मण वर्ण है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है, या शूद्र वर्ण का है, तो वाणी से वर्ण का पता चलता है। तो हम तो देवता वर्ण के हैं, इतने ऊंचे खानदान के, तो हमारी वाणी के अंदर से जो शब्द निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, हमारी भावनाएं जो निकलेंगी वो कैसी, ये पहली विधि है जमा करने का। तो अगर मुझे सेवा का चांस मिले, बहुत अच्छी बात है, उमंग उत्साह में सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए, सबका सहयोग लेते हुए उसको करते जाए। अगर नहीं भी मिला तो जिसको भी मिला, क्योंकि एक को ही मिलेगा ना, सबको तो नहीं मिलेगा, एक सेवा एक को ही मिल सकती है, तो इसीलिए अगर उसको मिला तो उसके प्रति भी वरदानी बन करके, महादानी बन करके उसको ऐसे शब्द कहे और उसमें से आधा जमा कर ले। तो जैसे दुनिया में होते हैं ना लोग,
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है, अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है, शिव पिता को अब याद करो।
तो इसी तरह मैं कह रही थी कि दुनिया में जैसे कुछ लोग होते हैं जो कमाई करना जानता है। मैं परसों के न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी कि बिल गेट्स जो है एक घंटे का $1 मिलियन कमाता है, एक घंटे में $1 मिलियन कमाता है, इसलिए आज दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति नंबर 1 पर आता है तो बिल गेट्स आता है। तो ये एक घंटे में $1 मिलियन कैसे कमाता है, तो उसका सारा लिखा हुआ था, वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि वो तो फिर भी इस दुनिया का व्यक्ति है, और हमको तो बाबा ने जब टाइटल दे दिया तुम पद्मा पद्म भाग्यवान हो, तो हमारे तो एक एक कदम में हम मल्टी मिलियन कमाने वाले हैं। तो वो कैसे कमाता है $1 मिलियन एक घंटे में, कि उसके दिमाग के जो आइडियाज है वो आइडियाज की वैल्यू है, तो वो फालतू नहीं सोचता है। उसने कहा फालतू सोचने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो जो सोचता है उसका एक आइडिया, और उस आइडिया को जितना वो कार्यान्वित करता है, प्रैक्टिकल कर्म में लाता है, और उस संकल्प को, उस आइडिया को कार्यान्वित करने में जितने लोग उसके मददगार या जिसको वो सहयोगी बना देता है, वो भी कमाई करते हैं, क्योंकि उनको भी पेमेंट करता है। लेकिन उसके एक आइडिया का ही कार्यान्वित करने में और लोगों से कराने में वो खुद इतना संपन्न हो जाता है, और स्थूल रूप में दूसरे जो उसके सहयोगी बन जाते उसको भी संपन्न कर देता है। भावार्थ ये कि हमारे मन के अंदर भी अगर फालतू विचार चल रहे हैं तो हमारी पद्मों की कमाई को नष्ट कर देता है। बाबा ने हमको हिसाब बताया है कि एक एक घड़ी का हिसाब क्या है, एक सेकंड का हिसाब संगम युग का क्या है, कितना पद्मों की कमाई जमा करने वाला। तो इसीलिए उस विचार को, उस समर्थ संकल्प को जितना प्रैक्टिकल लाने में आप लग जाते हैं, और उसमें जो भी आपके सहयोगी बनते हैं उसके प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प आप प्रवाहित करते हैं, माना उसको भी पेमेंट कर रहे हैं आप, लेकिन उससे आप हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। तो इसीलिए बाबा कई बार हम बच्चों को जो मुरलियों में कहते हैं, बच्चे व्यर्थ नहीं सोचो, व्यर्थ ही लीकेज का कारण है, सारा जो बुद्धि से लीकेज होता है उसका कारण है व्यर्थ। तो अब आप सोचो कि हमें कितना समर्थ सोचना चाहिए, या कितना शुभ भावना का, शुभ कामना का खजाना अपने अंदर बढ़ाना चाहिए ताकि हम सबको उसके आधार से पेमेंट कर सके, यही संगम युग में, और कहीं करनी न पड़े लेकिन यही करें। तो बिल गेट्स भले एक घंटे में 1 मिलियन कमाता होगा, लेकिन हम एक कदम में मल्टी मिलियन कमा सकते हैं, ये विधि है। तो जितना हर संकल्प को दूसरों के प्रति, स्वयं के प्रति या सेवा के प्रति यूज करते जाओ, उसको सफल करते जाओ, कार्यान्वित करते जाओ, उतना ये पद्मों की कमाई जमा कराएगा। दूसरी जमा करने की विधि या संपन्न बनने की विधि जो बाबा ने बताई है वो है बिंदी लगाने की। इसीलिए बाबा कहते हैं जैसे बिंदी लगाते जाओ, तो 1 के बाजू में बिंदी लगाए 10, 10 के बाजू में बिंदी लगाए तो 100, 100 के बाजू में बिंदी लगाई तो 1000, इतनी सहज वो फिगर बढ़ता जाता है। तो हमारे भी संपन्न होने की विधि यही है कि कोई भी बात, घटना, कोई भी परिस्थिति, समस्या जो भी हमारे सामने आए, उस समय वो परिस्थिति हमारी मन की स्थिति पर हावी न हो जाए, उसके लिए बिंदी लगाओ, ड्रामा फुल स्टॉप। किसी ने कुछ कह दिया तो भी समझो ड्रामा फुल स्टॉप, आगे सोचो नहीं, उसने क्यों कहा, कैसे कहा, किस कारण से कहा, जितना ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, ये टेढ़ा रास्ता है जो हमारी कमाई को खत्म कर देता है, हमें संपन्न बनने नहीं देता। लेकिन जितना बिंदी लगाते जाएंगे आप अपने खजाने को सुरक्षित रखेंगे। माया की यही पॉलिसी है, माया की यही पॉलिसी है कि जानबूझ करके आपके सामने कोई भी परिस्थिति आती है तो व्यर्थ संकल्प के आधार से क्वेश्चन मार्क शुरू करेगी। तो क्वेश्चन मार्क में अगर चले गए तो मन की स्थिति जो बननी चाहिए वो बनेगी नहीं, और ही हम अपने को घाटे में ले जाएंगे, अपनी खुशी खत्म कर देंगे, सारा दिन हम परेशान हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं जब भी कोई परिस्थिति आए बिंदी, परिस्थिति मेरी मन की स्थिति पर हावी नहीं होनी चाहिए, मैं मालिक हूँ, मैं परिस्थिति को कंट्रोल करने वाली हूँ, उसको मास्टर करने वाली, उसको चेंज करने वाली हूँ, इसीलिए वो परिस्थिति मेरी मन की स्थिति पर हावी नहीं होनी चाहिए, जो भी कोई बात हो फुल स्टॉप। कोई कुछ फालतू सुनाने आता है को फालतू बात छोड़ो फुल स्टॉप, उसको भी फुल स्टॉप। टेंशन की कोई बात आए फुल स्टॉप, जितना फुल स्टॉप लगाने का अभ्यासी बन जाएंगे कि ड्रामा कल्याणकारी है, मेरा अकल्याण कभी हो नहीं सकता है, ये निश्चय जिसको है और उस नशे को लेंगे। तो बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है जिसमें बाबा ने कहा, जैसे आज भी बाबा ने कहा हाय हाय नहीं करो, हाय भगवान, हाय बाबा, हाय हाय नहीं करो, वाह वाह करो। तो परिस्थिति या समस्या वाह वाह नहीं होते हुए भी वाह वाह बन जाएगी, आपके वाह वाह सोचने से वो वाह वाह बन जाएंगी, यानी वो प्राप्ति का अनुभव कराते हुए जाएगी, नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। कितनी भी बुरी घटना क्यों न हो, कितनी भी कठिन से कठिन बातें क्यों न हो, लेकिन वाह वाह जिसने करना सीख लिया है तो उसके सामने वो बात भी परिवर्तित होकर के, आपकी पॉजिटिव एनर्जी से वो भी परिवर्तित होकर के वाह वाह बन जाएगी। तो ये है जमा करने की विधि, बिंदी लगाते जाओ। जितना हो सके बिंदी लगाने के अभ्यासी बनो, जो हुआ वो भी कल्याणकारी, जो होने वाला है वो भी कल्याणकारी, जो हो रहा है वो भी कल्याणकारी। मेरा अकल्याण करने की ताकत इस संसार में किसी परिस्थिति में नहीं है, किसी समस्या में नहीं है। तो इस प्रकार की एक दृढ़ता और विश्वास हो तो बिंदी लग जाएंगे। लेकिन पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं ये सही होगा नहीं, पता नहीं इसने बोला है तो क्या हो जाएगा, वो पता नहीं पता नहीं पता नहीं तो पता ही कट जाता है। बाबा के ये महावाक्य, जो पता नहीं पता नहीं पता नहीं करता उसका पत्ता कटना ही है, यानी जमा के खाते को बढ़ा नहीं सकता है, वो संपन्न नहीं हो सकता है, उसका माइनस में ही चला जाता है, तो वो बैंक्रप्ट हो जाता है, देवालिया में चला जाता है। ये उसके लक्षण है, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। तीसरी विधि जो बाबा ने संपन्न करने की बताई, तो बाबा ने कहा कि अमृत वेले जब हम बैठते हैं योग में, श्रेष्ठ संकल्प, बहुत अच्छे संकल्प आते हैं दिन के लिए, समर्थ संकल्प आता है कि आज सारा दिन हम ऐसे चलेंगे ऐसे करेंगे। अमृत वेले बाबा अच्छे अच्छे विचारों की टचिंग करता है और खुद भी अमृत वेले दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि बाबा सचमुच में आज का दिन सारा दिन मौन रहूंगी, किसी के साथ बहसबाजी में नहीं आऊंगी, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करूंगी। लेकिन दिन भर में क्या होता है, वो जो अमृत वेले वाला संकल्प होता है वो दिन भर में क्या होता है, सोडा वाटर हो जाता है ना, सोडा वाटर हो गया, उड़ गया, बाफ बन गया जैसे। तो जो संकल्प किए वो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने खजाने को सफल करने के लिए दिन भर के लिए जैसे एक प्रोग्राम दे दिया अपने माइंड को, लेकिन दिन के समय जैसे ही दिन की शुरुआत होती है कि पता नहीं वो कहाँ उड़ जाता है, क्या हो जाता है, बाप बन जाता है, वो संकल्प प्रैक्टिकल कर्म में नहीं आता है। और जमा का खाता तभी होगा जब वो हर संकल्प को प्रैक्टिकल लाएंगे। जैसे एक उदाहरण मैं दूं आपको कि दुनिया के अंदर मान लो कि एक बड़ा सेठ है और वो संकल्प करता है, उसको बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा और उसने विचार किया कि चलो आज के दिन में मैं इतना 1000 रुपए का दान करूंगा, 50,000 का दान करूंगा, बहुत अच्छा संकल्प आया। लेकिन प्रैक्टिकल दान करता नहीं है तो उसका पुण्य जमा होगा? पुण्य जमा तब होता है जब प्रैक्टिकल कर्म करता है, खाली सोच लेने से उसका पुण्य जमा नहीं होता है। ऐसे अमृत वेले हम बहुत अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, बाबा भी कई बार कहते हैं बच्चे अमृत वेले इतने अच्छे संकल्प करते हैं कि बाबा को भी खुश कर देते हैं, और बाबा भी सोचता है वाह बच्चे अगर ये संकल्प तुमने साकार कर लिया ना तो धन्य धन्य हो गया, है ना, इतने अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं। तो अमृत वेले जो अच्छे अच्छे विचार आते हैं, विचार कर लेने से हमारा खाता जमा नहीं हो जाएगा, प्रैक्टिकल कर्म करने से ही जमा होता है। प्रैक्टिकल कर्म में आने से ही हम उससे संपन्न बनते हैं। तो इसीलिए जो अच्छे अच्छे संकल्प योग में करते हैं, नमः शाम के समय योग में बैठे, अमृत वेले बैठे, बाबा के कमरे में बैठे, झोपड़ी में बैठे, बहुत अच्छे अच्छे संकल्प आते हैं, लेकिन संकल्प कर लेने से जमा नहीं होता है, प्रैक्टिकल कर्म में लाने से जमा होता है। इसीलिए जो अमृत वेले संकल्प करो उसके साथ साथ शक्ति भी अपने में भर लो ताकि उसको प्रैक्टिकल में कर सको। अगर प्रैक्टिकल में किया नहीं तो अच्छा अच्छा सोच लेने से अच्छा जमा हो गया ये खुशी का अनुभव नहीं कराएगा। उस वक्त बड़ा अच्छा फीलिंग लाएगा लेकिन दिन भर में जब एक बार भी वो संकल्प को रिवाइज नहीं किया, उसको प्रैक्टिकल अमल में नहीं लाया तो कैसे होगा। इसीलिए जो संकल्प करते हैं उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए लग जाओ, दृढ़ संकल्पधारी बन जाओ और उसको प्रैक्टिकल में ले आओ। तो आप प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे कि जो अमृत वेले संकल्प आया और उसी दिन अगर आपने किया तो उसका फल कई गुना आपको प्राप्त हो जाएगा और उस संपन्न स्थिति का अनुभव कराएगा। लेकिन अगर लेट कर दिया, मानो चार दिन बाद विचार आया कि हाँ उस दिन आया था संकल्प, चलो आज कर लेते हैं, तो चार दिन का जो गैप पड़ा तो उसकी इंटेंसिटी में बहुत अंतर आ जाता है और इंटेंसिटी कम हो जाने के कारण जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। सच पूछो तो अमृत वेले जो आपको बहुत सुंदर संकल्प आता है वो कभी कभी खुद के संकल्प नहीं होते, बाबा का टचिंग होता है। बाबा टचिंग अमृत वेले ही करता है और बाबा जानता है आपके अंदर क्षमता है, शक्ति है, तभी बाबा ने आपको टचिंग किया है और उसी दिन वो करना है आपको, आपके द्वारा ही बाबा को कराना है। इसीलिए बाबा ने आपको पहले संकल्प देकर तैयार किया। बाबा शक्ति भी भर देता है, लेकिन आलस या अलबेलेपन के वश या ईर्ष्या या द्वेष के कारण या दूसरी प्रकार की नेगेटिव या व्यर्थ सोचने की जो एक आदत पड़ी हुई है उसके कारण हम समय को गंवाते हैं। तो जितना समय को गंवाया और बाबा का वो संकल्प कार्यान्वित नहीं किया जो होना चाहिए था जिस वक्त, तो जैसे वो होता है ना, सिम सिम दरवाजा खुल जा, वो एक सुना होगा आपने, जाते हैं सिम सिम दरवाजा खुल जा और एक एक दरवाजा खुलता जाता है। तो इसी तरह बाबा जब आपको कोई भाग्य देना चाहता है तो बाबा का सिम सिम दरवाजा खुलने का एक ही मंत्र है, वो आज मैं मंत्र आपको दे देती और वो मंत्र है जी हाँ। जी हाँ, मम्मा अगर नंबर वन गई, संपन्न हो गई, तो उसका एक ही महामंत्र था, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है और बस मुझे करते जाना, जी बाबा जी बाबा जी बाबा। ऐसे कोई भी बड़े निमित्त बनते हैं वो कार्य कहने के लिए कि आप करो, जो भी निमित्त बाबा ने जिसको भी निमित्त बनाया, लेकिन उस वक्त अगर ना जी नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसे जिसने किया तो सिम सिम दरवाजा बंद हो जा, वो भाग्य का दरवाजा बंद हो जाता है। तो एक है सिम सिम दरवाजा खुल जा जिसका मंत्र है जी बाबा, बड़ों को जी करना, तो भाग्य के दरवाजे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक खुलता जाता है। और ना किया, ना करने वाला नास्तिक, इसीलिए बाबा कहते जो हाँ करता है वो रहस्य को जानता है। कौन सा रहस्य? भाग्य को बढ़ाने के रहस्य को जानता है। अगर आप में शक्ति नहीं है लेकिन हाँ कर दिया तो बाबा उस वक्त शक्ति भर देता है और आपको निमित्त बना देता है और वो भाग्य से संपन्न कर देता है आपको। लेकिन जिसने ना किया कि नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पर पहले ही इतना काम है, अब बाबा को पता नहीं था कि आपके पास इतना काम है, बाबा को पता नहीं था कि आपके पास टाइम है या नहीं है। अगर आपने हाँ किया तो हजार भुजा वाला हाजिर हो जाएगा आपका सारा कार्य करने के लिए भी और आपको वो भाग्य देने के लिए आपके द्वारा वो कराने की शक्ति भी बर के करा देगा। हजारों भुजा वाला बाबा हाजिर हो जाएगा, सहस्त्र भुजाधारी आप साक्षात बन करके वो कार्य कर्ण करके उसके भाग्य को अनुभव करने वाले आप बन जाएंगे। ये एक बहुत सुंदर विधि है, ये महामंत्र है जी बाबा। बड़ों को भी जी करना, वो सिम सिम दरवाजा खुल जाए। बाबा ने उसको निमित्त बनाया, कोई भी बड़ा होगा उसको निमित्त बनाए, लेकिन आपने जी कहा तो आपका भाग्य का दरवाजा एक से एक खुलता जाता है, खुलता जाता है, खुलता जाता है और देखो कितने संपन्न होने का अनुभव स्वयं में कर पाते हैं। हाँ, तो ऐसे सिम सिम दरवाजा खोलना आएगा आएगा नहीं आएगा? हाँ, सिम सिम दरवाजा खोलने का एक ही महामंत्र है, जी बाबा। मम्मा ने हमेशा जी बाबा किया, दादी ने हमेशा जी बाबा किया, बड़ों ने हमेशा बाबा को, मम्मा को, दादियों को जी बाबा करते गए और एक एक भाग्य का दरवाजा खोलते गए और आज कितने संपन्न स्थिति में है, साक्षात्कार मूरत है हमारे सामने। उन्होंने भी हमारी एज को क्रॉस किया था, उनके सामने भी हमारे जैसी तकलीफें आई थी, उनके सामने भी उनकी बड़े दादियां थी जिनके अंडर उनको भी चलना पड़ा था, लेकिन फिर भी वो सारी बातों को क्रॉस करके आज इतने संपन्न स्वरूप में उनको जब देख रहे हैं तो उनका आधार क्या है? तो यही जी बाबा करके जी बड़ों को किया तो माना एक एक दरवाजा खुलता जाएगा। हजार भुजा वाला बाबा साक्षात आपके साथ हो जाएगा, आपको मदद करने के लिए ये अनुभव होगा, अनुभव होगा। जी कह करके तो देखो, मुझे याद आता है कि जब मैं शुरू शुरू में सेंटर पर गई थी तो उस समय ये क्लासरूम में बिछाने वाले यू फॉर्म होते हैं ना, तो क्लासरूम में जैसे सभी को नीचे बैठने में सुविधा होवे तो 100 यू फॉर्म आए थे। तो वो 100 यू फॉर्म थे तो क्लास में बिछाने से पहले तो दीदी ने कहा इसको कवर चढ़ा देते हैं ताकि गंदा न हो जाए, कहीं पर भी रफ यूज हो तो भी गंदा न हो, तो इसीलिए यू फॉर्म को कवर चढ़ाते हैं। तो मैं उस समय नई नई आई थी तो मुझे कहा तुम चढ़ाएगी, तो मेरे साथ एक कन्या को दे दिया, तुम इसके साथ मिल करके ये 100 यू फॉर्म को कवर चढ़ा दो। मैंने हाँ कर दिया, अब मुझे कोई अनुभव नहीं था लेकिन हाँ कर दिया, बस दीदी ने कहा है जी जी दीदी करके हमने कर लिया। अभी शुरू किया तो यू फॉर्म पर से वो कपड़ा खिसके ही नहीं, भाई गद्दा हो तो खिसक जाए कवर और फटाफट चढ़ा सकते, लेकिन यू फॉर्म ऐसी चीज जो खिसके ही नहीं, वो कवर ही नहीं खिसके। अब मुझे अनुभव तो था नहीं, तो घंटा बीत गया और सिर्फ एक को कवर चढ़ा पाए, एक घंटे में एक को कवर चढ़ा और 100 यू फॉर्म है। तो मैं इतनी थक गई, एक को चढ़ाते चढ़ाते इतनी थक गई, हाथ दुखने लगा मेरा, तो मैं रोने लग गई। मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया कि ये 100 कब चढ़ जाएगा, है ना, और ये तो ये एक 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 इंच भी नहीं खींच सकता है। तो मैं इतनी रोने लगी तो किसी ने जाकर के दीदी को कहा, वो बहुत रो रही है, पता नहीं क्यों रो रही है। अच्छा, दीदी आई मेरे को पूछने के लिए क्यों रो रही है। उस दिन लच्छू दादी और विश्वरतन दादा आए थे सेंटर पर, तो लच्छू दादी और विश्वरतन दादा एकदम दौड़ के आए। लच्छू दादी का नेचर तो जानते हैं आप, तुरंत आ गई दौड़ते हुए, क्या हुआ तेरे को, क्यों रो रही है तुम? तो मैं कुछ बोलू ही नहीं, मैं रोती जाऊं। तो उस समय जो है, फिर दीदी आए, दीदी ने कहा क्या बात है, क्यों रो रही है? तो मैंने कहा ये फोम पर कवर ही नहीं चढ़ रहा है, एक घंटा हो गया एक को चढ़ा सकी, मैं अभी इतना सारा जो थप्पी है 100 यू फॉर्म की वो कैसे चढ़ाऊंगी, मेरे को नहीं आता है चढ़ाने को। तो विश्वरतन दादा इतना इतना सरल नेचर वाले, और लच्छू दादी, विश्वरतन दादा ने कहा मैं तेरे को सिखाता हूँ कैसे चढ़ाना होता है। तो विश्वरतन दादा ने कहा पहले कवर उल्टा करो, फिर इनके दोनों कान पकड़ो, फिर दूसरे, लच्छू दादी ने कहा फिर खींच लो, एक सेकंड में चढ़ गया। लेकिन इतना सहज था, मुझे ये अनुभव नहीं था ना, तो मैं एक एक कवर को ऐसे चढ़ा रही थी, छोटी सी तो थी, 20 साल भी नहीं हुआ था मुझे, तो मैं इतना घबरा गई कि इतना सारा। तो जब विश्वरतन दादा ने कहा चलो मैं तेरे को मदद करता हूँ, मैं तब देखा कि कितनी महान आत्मा, लेकिन महान आत्मा ने किस तरह से हमें मदद किया। हाँ, अगर कोई चीज नहीं आती है तो देह अभिमान में ना आकर के हम अगर उससे पूछ ले के कैसे करना होता है, तो एक तो सीखने को भी मिलता है, अनुभव भी मिलता है, और वो सारे यूफॉर्म का कवर जो था एक घंटे के अंदर 100 कवर चढ़ गए, और विश्वरतन दादा, लच्छू दादी दोनों ने मिलकर के मदद किया, चार जने मिल करके चढ़ाया और सारा कर दिया। तब से लेकर के बड़ों के नजदीक जो आने का एक सौभाग्य है उसका कारण यही था, हांजी करना, हांजी करते हुए आगे बढ़ना। जितना हांजी करते हुए आगे बढ़ो तो देखो कैसे, जैसे कहा ना, सिम सिम दरवाजा खुल जा, सीखने को भी मिलता है, अनुभव भी मिलता है और वो सदा के लिए जीवन में याद रह गया कि कैसे कठिन काम को भी करने की एक विधि होती है बस। और वो विधि अगर आ जाए तो करेंगे प्रैक्टिकल तभी तो आएगी, अगर करेंगे ही नहीं तो आएंगी कहाँ से। तो अनुभवी बनना हो तो अनुभवी बनने के लिए खुद जितना करेंगे है ना, तब आएगा। कई बार कई लोगों को हम देखते हैं, कहते हैं बड़े हमको ऑर्डर कर देते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, लेकिन चलो उन्होंने कह दिया, लेकिन आपको अनुभवी बनाने के लिए, क्योंकि आगे चल करके आपको कई आत्माओं के लिए मिसाल बनना होगा, दृष्टांत बनना होगा और वो आपको देख करके आपसे प्रेरणा लेंगे। आपने प्रैक्टिकल किया होगा तभी आप अनुभवी बन जाएंगे और छोटी उम्र में भी अनुभवी। अभी मैं कहां गई थी, बहुत छोटा सा मतलब शहर बहुत बड़ा था लेकिन वहां जो रहने वाली बहन थी बहुत छोटी बहन थी, बहुत छोटी बहन थी, लेकिन इतना बड़ा सेंटर उसने बनाया। उसका इनॉग्रेशन के लिए हम गए थे तो इतना बड़ा सेंटर का इनॉग्रेशन जब हुआ तो वहां के सारे शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति आए हुए थे वहां पर, माना सब बड़े बड़े लोग आए हुए थे, मेयर भी आया था तो दूसरे भी, माना सारे बड़े बड़े शहर के लोग आए थे। उन्होंने अपनी स्पीच में एक ही चीज कही कि आज हमने साक्षात ब्रह्मा कुमारियों को देखा कि इनकी कैपेसिटी कितनी है। उन्होंने कहा हमारे घर में बहु बेटियां, इतना मकान तो क्या, एक छोटी सी काम, एक छोटा सा काम नहीं कर सकते, ये छोटी लड़की को देखा हमने, एक एक के पास जा जा करके अपना काम कराती थी और आज इतना बड़ा सेंटर उसने बना दिया, ये हमारी बहू बेटियां नहीं कर सकती है, सिर्फ ब्रह्मा कुमारियां ही कर सकती है। उसको सबने जैसे के ऐसे शब्द बोल बोल करके इतना उसको महसूस कराया कि सचमुच इतनी छोटी, और है वो बहन 22-23 साल की बहन है, 22-23 साल की बहन को सारे शहर के प्रतिष्ठित लोगों ने जैसे हैट्स ऑफ करके उसके आगे सिर झुकाया कि हमारी बहू बेटियां ये काम नहीं कर सकती है लेकिन ब्रह्मा कुमारियां कर सकती है और उसके लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये आज हमने मान लिया कि ब्रह्मा कुमारियों के लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो वो कब कर पाई, वो कब कर पाई, ये जो सुनने के बाद, ये सारे प्रतिष्ठित लोगों का सुनने के बाद, और उसकी दीदी ने भी कहा कि जब से ये मेरे पास आई है तब से लेकर के हमने इसमें इसीलिए विश्वास देकर के ये मकान बनाने का काम दिया क्योंकि हमें पता था कि ये कभी हारने वाली नहीं है। तो मैंने उसको पूछा कि बहन तुम मुझे ये बताओ कि ये मकान जो तेरा बना कितने में बना, तो उसने बताया मुझे कि ये सारा मकान बना है लगभग 35 लाख में बना। 35 लाख तो लग ही जाता है, 35-40 लाख तो आजकल मकान में लगता ही है। तो मैंने उसको पूछा कि तेरे पास इतने पैसे थे, तो कहा दीदी एक बात बताऊं मैं आपको, जिस दिन मैंने काम शुरू किया था मेरे बैंक में खाली 1 लाख रुपया था और आज जब काम पूरा हुआ, सारा मकान बन के तैयार हो गया फर्नीचर सहित, आज भी मेरे बैंक में 1 लाख रुपया ही बचा है। ये कहां बना मुझे खुद को मालूम नहीं, कहां बना, कैसे बना, किस। तो मैंने कहा तुमने किसी से पैसा लिया, बोले मैंने किसी से मांगा नहीं, मैंने अपने जीवन का ये महामंत्र रखा था मुझे किसी से भी मांगना नहीं है, बाबा को बनवाना होगा बाबा अपने आप बनाएगा, बाबा का कार्य है, बाबा जाने, बाबा के ऊपर छोड़ दिया था। कैसे लोग आते गए, कुछ ना कुछ डोनेट करते गए, कोई सीमेंट देने लगे, कोई लोहा देने लगे, कैसे दिया मुझे पता नहीं है। मेरे बैंक में शुरू किया था तब भी 1 लाख था, आज पूरा किया तब भी 1 लाख ही बचा है, कैसे ये मकान बना, इतना बड़ा प्रोग्राम रखा, मुझे पता नहीं। इसीलिए करण करावनहार बाबा है। कई लोग सोचते हैं मांगना पड़ेगा हमको, जाकर के लोगों से मांगना होगा तो सफल कराना होगा। अरे ये चिंता हमें क्यों रखनी है, करावनहार बाबा है। हमने मांगना शुरू किया, जिस दिन हमने एक चीज भी किसी से मांगा, बाबा अपना हाथ खींच लेगा, बाबा नहीं करवाएगा। आप मांग करके कितना मांग सकते, बाबा भी देखता है कितना मांग सकते हैं। कितनी जगह आप नाक रगड़ेंगी मांगने के लिए, जब भगवान ने इतना ऊंचा स्वमान दिया, उस सीट से नीचे क्यों आए। बाबा पर छोड़ दो, बाबा पे टचिंग कराएगा, और टचिंग करा कर करके एक एक व्यक्ति हाँ परीक्षा जरूर लेगा उसमें, लेकिन उन परीक्षाओं में भी आपकी धैर्यता के, आपके गुणों के खजाने से संपन्न बनाने के लिए, आपको निर्माण बनाने के लिए वो परीक्षाएं आएगी। लेकिन करावनहार बाबा है, बाबा के ऊपर छोड़ दो, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी को कहने की भी, इशारा देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप भगवान टचिंग करेगा, वो व्यक्ति आएगा और आपको दे करके जाएगा। करके देखो, ब्रह्मा कुमारी बाबा ने हमेशा कहा, मांगने से मरना भला, हम खजानों से संपन्न, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, और हम किसी के आगे हाथ फैलाए कि आप हमको थोड़ा सहयोग दो, ये हम मांगे, मांगने की जरूरत नहीं। ये प्रत्यक्ष उदाहरण मैंने देखा कि 35 लाख कहां से आए और कैसे मकान बना। वो बहन का अपना अनुभव, मैंने किसी से एक पैसा भी मांगा नहीं है, किसी के आगे कहा नहीं है, मैं रोई नहीं हूं किसी के आगे कि मेरे पास पैसा नहीं है। बाबा ने कैसे कराया, हम बाबा जाने और वो जाने। इसीलिए कहा कि बाबा कैसे कराता है। ऐसे कई बहनों का अनुभव, मैं तो इतना सेंटरों पर जाती हूँ, इतने अच्छे अच्छे अनुभव सुनने को मिलते हैं, तब मुझे महसूस होता है कि जो बाबा के सामने अमृत वेला संकल्प रखो, आप प्रैक्टिकल कार्य करते जाओ, करते हुए जी बाबा करते जाएंगे, एक एक दरवाजा खुलता जाएगा और आप अपने आप में संपन्नता का अनुभव करते जाएंगे, इतना संपन्न हो जाएंगे, ऐसा महसूस करेंगे। ये मत सोचो कि पता नहीं वो शहर के लोग बहुत अच्छे थे, ये हमारे शहर के लोग ऐसे नहीं है। मैं आपको बताऊं, उस शहर के अंदर 60% मुस्लिम बसती है, 40% ही हिंदू बसती है, उसके बावजूद भी उसने किया। वो 40% में भी स्टूडेंट कितने हैं उसके पास में, थोड़े से स्टूडेंट है, लेकिन वो थोड़े से स्टूडेंटों ने कैसे, क्योंकि वो उमंग उत्साह के बोल बोलती गई, उमंग उत्साह सबके अंदर भरती गई, मोटिवेट करने का कार्य करती गई और बाबा कराता गया बस। और ये संपन्नता का अनुभव है। इसीलिए कहा कि जो संकल्प बाबा टच करता है, जी बाबा करके आप पूरा करो, देखो बाबा कैसे कार्य कराता है। चौथी विधि, जैसे दुनिया में कहा जाता कोई किसी को गिफ्ट देते हैं, छोटी सी गिफ्ट होती है कभी कभी, लेकिन क्या कहते हैं, चीज को नहीं देखना, हमारे दिल को, हमारे प्यार को देखना। बहुत स्नेह से जब देते तो वो चीज की वैल्यू नहीं होती, जो उसमें समाया हुआ छिपा हुआ स्नेह होता है उसकी वैल्यू होती है। इसी तरह बाबा जो हमें गिफ्ट देता है सेवा की, कितना दिल से हम करते हैं वो उसकी वैल्यू है। बाबा जो वैल्यू लगाता है, कितना दिल से वो सेवा का कार्य आपने किया है। एक होता है बड़बड़ करके सेवा करना, दूसरा कोई कर ही नहीं रहा है, मेरे को ही करना पड़ रहा है, बड़बड़ करते रहना, है ना, सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो एक होता है बड़बड़ करके सेवा करना, दूसरा होता है दिल से सेवा करना। दोनों की क्वालिटी में बहुत बड़ा अंतर होता है। तीसरा होता है दिमाग से सेवा करने वाले, लेकिन क्वालिटी किसकी अच्छी होगी, दिल से करने वालों की। तो बाबा भी जो प्राइज देता है, जो आपका सफल कराता है, समय, श्वास, शक्ति, संकल्प, ये सारे खजाने सफल जो कराता है, बाबा भी उनका कराता है जो दिल से करता है। जो बड़बड़ करके करने वाले भले कितनी भी सेवा करे, उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि उसका कुछ भी जमा नहीं हुआ। तो जब सेवा करनी है तो बड़बड़ करके क्यों सेवा करो, दिल से करो ना। दिल से करेंगे, आपको झाड़ू मारने की सेवा क्यों ना मिली हो, लेकिन वो सेवा भी जितना आप दिल से करेंगे आपका जमा होगा। इसीलिए बाबा कई बार मुरली में कहता है कि गरीब एक रुपया देता है और अमीर 1,000 देता है, दोनों का बराबर है, क्योंकि उसने 1 रुपया भी जो दिया दिल से दिया है। उसने ये नहीं सोचा कि भगवान मेरा स्वीकार करेगा नहीं करेगा, अमीरों का स्वीकार करेगा नहीं। भाग्य किसका ज्यादा जमा होता है, वो 1 रुपया देने वाले का जमा होता है। ऐसे जो सेवा आप दिल से करते हैं, तो दिल से करने से आपका खाता संपन्न होता जाता है। जो दिमाग से करते हैं, चालाकी से करते हैं, नाम कमाने के लिए, नाम हो जाएगा लेकिन खाता जमा नहीं होगा। जो दिल से करता है उसका जमा 100% होता है। इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे, जैसे दुनिया के अंदर कोई गिफ्ट छोटी सी देते हैं, लेकिन जब दिल से देते हैं तो स्नेह देखा जाता है, चीज नहीं देखी जाती। चीज की वैल्यू नहीं होती है, स्नेह की वैल्यू होती है। ठीक इसी तरह कोई भी सेवा जब दिल से की जाती है तो भगवान भी उस दिल के भाव को देखता है, चालाकी को नहीं देखता है। चालाकी से अगर नाम कमाने के लिए उसने सेवा किया, उसको यहाँ नाम मिल जाएगा लेकिन उसका खाता खाली होगा, जमा नहीं होगा। और आपने अगर दिल से बर्तन मांजे होंगे, झाड़ू मारा होगा, नाम दिल वालों का होगा भगवान के खाते में, दिमाग वाले का नाम नहीं होगा, दिल वाले का। दादी जानकी पिछले टीचर्स की भट्टी में लास्ट जो गई, उस टीचर्स की भट्टी में जब क्लास करा रही थी तो बहुत अच्छी एक बात दादी ने कही। दादी ने कहा कि दादी खुद चंद्रमणि दादी की ब्राह्मणी बनी थी। बाबा ने जब पूछा था तो दादी को कि कहाँ सेवा करोगी, तो कहा मैं चंद्रमणि दादी के अंडर में सेवा करूंगी, दादी जानकी ने कहा अपने अनुभव में। और चंद्रमणि दादी मेरी टीचर थी और मैं उसकी ब्राह्मणी थी, और ब्राह्मणी के रूप में मैं उसकी सेवा करती थी। लेकिन क्लास में जो बाबा ने सभी बहनों को जब बुलाया और किया, तो कहा दादी जानकी ने कि मुझे बाबा के बातों से इतनी जो शक्ति मिली, वो इसलिए मिली कि बाबा ने भरी क्लास में भोली दादी की महिमा किया, जबकि भोली दादी सामने कभी नहीं आती थी। भोली दादी हमेशा किचन में बैठी रहती थी। आप लोगों में से तो शायद ही किसी ने भोली दादी को देखा होगा। भोली दादी को कितनों ने देखा है, जरा हाथ। अच्छा, बहुत सारी बहनें। तो भोली दादी हमेशा किचन में बैठी रहती थी, वहीं बैठी रहती थी और वहां से ही। लेकिन उसका एक ही काम था, मुझे सबको संतुष्ट करना था। कभी क्लास में भले नहीं जाती थी, बाबा के सामने दौड़ दौड़ करके जा करके बैठ जाना, ये दादी को नहीं आता था भोली दादी को। लेकिन बाबा हमेशा मुरली में भोली दादी के, क्योंकि वो दिल से करती थी, दिल से करती थी। उसको कोई नाम नहीं कमाना था, उसको कोई ये नहीं करना था, लेकिन दिल से सेवा करती थी। संतुष्ट जैसे रखने का उसका नेचर था। मुझे याद आता है कि जब मैं शुरू शुरू में मधुबन में आई और सेवा करती थी, तो भोली दादी मुझे सुबह सुबह में बुलाती थी। जब नाश्ता करने जाती थी ना मैं, तो नाश्ता करते समय रास्ते में जाती थी तो देखती थी भोली दादी वहाँ बैठी थी, तो दादी ओम शांति, मैं हमेशा दादी को ओम शांति करती थी जाते जाते। तो दादी को जैसे बहुत प्यार इसीलिए आता था क्योंकि एक समय की बात बताऊं कि एक बार मधुबन में पंजाब का ग्रुप आया यहाँ शिविर में, 10 लोग थे, खाली 10 लोग थे, उस समय तो ऊपर शिविर चलती थी, तो पंजाब का ग्रुप आया था, 10 लोग थे और रात को 10 बजे पहुंचे थे। उस समय खाना कुछ बचा ही नहीं था, कुछ भी खाना नहीं था, तो बाबा राम भाई ने आकर के दादी को कहा, बोली दादी तो 11 बजे तक बैठी रहती थी, तो बोली दादी को कहा, दादी 10 लोग आए हैं पंजाब से और खाना खाएंगे सभी लोग। तो दादी ने देखा, सारे तपेले उठा करके देखने लगी तो खाना कुछ भी नहीं था, और उसी समय मैं भी पानी भरने जा रही थी अपनी बॉटल में, तो पानी भरने के लिए जब किचन के तरफ गई तो पानी भर करके मैं कमरे में जाने लगी थी, तो दादी ने देखा मेरे को, तो कहा इधर आओ, मेरे को बुलाया उधर, तो मेरे को कहा देखो पंजाब के 10 लोग आए हैं और खाना कुछ नहीं, अभी खाना खाएंगे, तुम मदद करो चलो। तो बैंगन आलू की सब्जी बनाई, तो कहा बैंगन आलू काट दो फटाफट, तो मैं काट दिया 10 लोगों के हिसाब से। फिर कहा ये लोग तो चावल खाएंगे नहीं, ये तो रोटी खाने वाले हैं, तुमको रोटी बनानी आती है ना? मैंने कहा आती है दादी, तो चलो रोटी बनाओ, है ना। तो मैं रोटी बनाती गई, बाबा राम भाई सेकते गया, दादी ने इधर सब्जी रखी, तो रात को 10 बजे बना करके 11 बजे उन लोगों को खिलाया, ये भोली दादी। आज अगर 10 बजे किसी को उठाकर कहे 10 लोगों का आपको खाना बनाना है, क्या करेंगे? बड़बड़ करेंगे, क्या करेंगे कि दिल से करेंगे? भोली दादी का मार्क्स जमा क्यों होता था, ये एक मिसाल बताया कि प्रैक्टिकल हमने देखा कि रात को 10 बजे पूरा खाना बनाया, पंजाब के लोग हैं, रोटी खाने वाले हैं, ये चावल खाने वाले नहीं है जो चावल का देगड़ा चढ़ा दिया, और रोटी बना करके गरम गरम रोटी उन लोगों को खिलाई। अब उन लोगों को जो ज्ञान की बातें सुनाएंगे वो स्पर्श होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, सेवा की सफलता है कि नहीं। आज जितना भाषण देकर के शीलू बेन ने जो शिविर कराई, मार्क्स किसके ज्यादा होंगे, भोली दादी के या शिलू बहन के, या बराबर होंगे, क्या कहेंगे? भावार्थ ये कि जो सेवा करो दिल से करो, ये नहीं कि चलो पुलाव चढ़ा दो, खाना खिला दो, हाँ कोई बात नहीं, पंजाब के या कोई भी हो चावल खा ले वे, कोई बात नहीं, रोटी कौन बनाएगा। ये भी हमने देखा है कि कईयों का एटीट्यूड ये होता है कि रोटी कौन बनाएगा, चावल खिला दो, थोड़ा थोड़ा भी भले खा के सो जावे ना, कल सुबह मिलेगा सब कुछ, है ना। ये एटीट्यूड भोली दादी का नहीं था। भोली दादी ने कहा नहीं, उनके लिए रोटियां बनानी है, खुद आटा गूंदा, मेरे को कहा तू रोटियां बेल, और बाबा राम भाई को कहा रोटी सेक। ये भोली दादी थी, रात को 10 बजे जिसने खाना इतना प्यार से बनाकर खिलाया, मैं देखते हुए जो हैरान हो गई कि बाबा ऐसे ही नंबर 1 नहीं बताता है उसको, जो मुरली में नाम लेता है ऐसे ही नाम नहीं लेता है, भले वो कोई दिन क्लास में आके बैठी नहीं होंगी, लेकिन फिर भी बाबा की मुरली में भोली दादी का नाम आता है जो आता है जो, है ना, क्योंकि दिल से सेवा। तो मार्क्स किसके मिले? दिल से सेवा करने वाले का मार्क्स मिले। भावार्थ ये कि जितना दिल से करेंगे, इतनी दुआएं जमा होंगी, उतने हम अंदर से संपन्न बनेंगे, अपना खाता इतना संपन्न बनाएंगे, बाकी जब सेवा करनी है चाहे बड़बड़ करके करो, दिल से करो, आपके ऊपर है कि आपको किस एटीट्यूड को अपनाना, क्योंकि मार्क्स या संपन्नता का आधार वही है। इसीलिए कहा बातें आएंगी, परीक्षाएं भी आएंगी, लेकिन प्रैक्टिकल हमने देखा भोली दादी को कैसे हर बात में मार्क्स ले लेती थी। तो इसीलिए जब हमको देखती थी ना, उसका मेरे से विशेष प्यार हो गया, उसे एक छोटी सी सेवा करने से। तो जब भी शिविर करा करके मैं जाती थी नाश्ता करने के लिए, तो मेरे को कहती शिविर करा के आई है? मैंने कहा हाँ दादी शिविर कराई, अभी तो है ना सीजन है शिविर वालों की, तो कहती है, कटोरी निकाल के रखती थी, ये मक्खन खा लेना, मक्खन दे देती थी। इतना दादी का प्यार था, इतना प्यार था, जो बात मत पूछो कि कटोरी मक्खन के रखती थी मेरे लिए, और जब भी मैं वहां से आती, तुम रोज सुबह सुबह आया करो, मक्खन की कटोरी ले जाओ, दिमाग खर्च करती हो ना, दिमाग को मिले। भोली दादी जाने के बाद वो मक्खन देने वाला कोई नहीं है। भावार्थ ये कि कितना ख्याल रखती थी दादी, है ना, इसका नाम था दादी। बड़ी दादी जैसे ही सीजन शुरू होती थी, लच्छू दादी को बुलाकर कहती थी, इसको और शीलू को दोनों को एक एक पैकेट बादाम का दे दो, रोज चार बादाम अपने कमरे में भिगो के खाना, दिमाग खर्च करती है ना, बोलती थी। बड़ी दादी हमेशा बादाम का पैकेट, भोली दादी कटोरी भर के मक्खन दे देती थी, नहीं खाओ, मना करो तो भी नहीं नहीं खाओ, तुम्हारा दिमाग खर्च हो रहा है। मैं ये देखती थी कि देखो दादी को कितना ख्याल आता है। बड़ी दादी ऐसी बड़ी दादी नहीं बनी, भोली दादी ऐसी भोली दादी नहीं बनी। आज तो सेंटरों पर कोई कितनी भी सेवा करता हो, लेकिन फिर भी इस तरह की जो पालना है, लेकिन आप जितना दिल से करेंगे भावार्थ, ये आपका खाता इतना जमा होता जाएगा, और बाबा आपको जैसे बादाम खिलाएगा, सूक्ष्म में मक्खन खिलाएगा, ये अनुभव आप करेंगे प्रैक्टिकल में। भावार्थ ये के करके तो देखो, तो क्वालिटी दिल की है, सेवा का भाव दिल का है। जितना सेवा का भाव दिल वाला होगा, बाबा भी उसकी हर दिल पूरी करेगा, ये अनुभव। आप दिल से सेवा करो, बाबा आपके हर दिल की ख्वाहिश पूरी करेगा, ये आप जीवन में अनुभव करेंगे। किसी को कहने की जरूरत नहीं है, आप जो संकल्प करेंगे वो संकल्प आपका सिद्ध हो जाएगा, बाबा पूरा करेगा, क्योंकि आपने दिल से सेवा किया है। तो दिल वाले का भाव बाबा के पास इतना पहुंचता है कि आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये है जमा करने की विधि। तो ये विभिन्न तरीके से आप जमा करते जाओ, संपन्न बनते जाओ, हर कदम में पद्मों की कमाई आप महसूस करेंगे, और आप अनुभव करेंगे कि जैसे बाबा आपको ऐसे हथेली पर रखते हुए थकावट का अनुभव नहीं कराएंगा, हथेली पर लेकर के जैसे आपको हर जगह ले जाएगा, जो सेवा करनी होगी तो भी आपको महसूस नहीं होगा आप हाथों से सेवा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा महसूस करेंगे जैसे बाबा अपनी हथेली में रखते हुए हमारी पालना कर रहे हैं। ये भी अनुभव करेंगे कि बाबा आपका कितना ध्यान रखता है। कोई आपको ईर्ष्यावश धक्का मारने का पुरुषार्थ करेंगे, इसको गिरा दो, लेकिन बाबा आपको पंख जोड़ देगा, गिरने के बजाय उड़ जाएंगे, ऐसा महसूस करेंगे। ये भी अनुभव करेंगे, कोई धक्का मारने का प्रयत्न करेगा, ऐसे शब्द बोल के आएंगे आपके लिए, और बाबा आपको पंख दे देंगे और आप उड़ जाएंगे, एक फरिश्ता बन जाएंगे, ऐसा महसूस करेंगे, इतना सुंदर सुंदर अनुभव करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कदम कदम में पद्मों की कमाई, लेकिन उसके लिए कभी किसी के प्रति न व्यर्थ संकल्प चलाना है, न नेगेटिव संकल्प चलाना है, न सेवा में बड़बड़ करना है, बस आप शुभ संकल्पधारी, महादानी, वरदानी, उमंग उत्साह के बोल बोलने वाले, वरदानों की भावना रखने वाले, शुभ भावना शुभ कामना रखने वाले, मन की स्थिति एकदम ऊंची रख करके चलने वाले, सदा हांजी का पाठ पढ़ते हुए बस सिम सिम दरवाजा खुल जा और एक एक दरवाजा खुलने का अनुभव करने वाले, और देखो आप कैसे कहां से कहां पहुंच जाते हैं, ये आप खुद अनुभव करेंगे। ये है संपन्न खुद बनो, और आपके द्वारा भी बाबा अनेकों को संपन्न बनाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मांगने से कभी नहीं मिलता है, आप सेवा के मांगने वाले बनो, या कोई पोस्ट पोजीशन के मांगने वाले बनो, या सेंटर के मांगने वाले बनो, ये मांगने वाले बनो, आपको कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। और अगर मिल भी गया तो लोग अपना पीछा छुड़ाने के लिए आपको दे भी देंगे, आपको सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलेगा। संतुष्टता रूपी धन, खुशी का धन कभी नहीं आएगा। इसीलिए हमेशा वो टेंशन क्रिएट करने वाली चीजें आपके सामने आएंगी, लेकिन हाँ जी का पाठ पढ़ते हुए, हाँ जी करते चलो, दिल से सेवा करते चलो, जो संकल्प बाबा टच करता है उसको साकार करते चलो, तो देखो बाबा कैसे आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, ये अनुभव है। ठीक है, ओम शांति।
सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे चल जाएंगे, सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे, हो जा समर्पण कर दे अर्पण, राह में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, निभा